वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नन्दे गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वैराग्य युग भक्ति रसं प्रयत्नय पायन् मां विष्णुवन्दनं कृपां मुदीरया पर दुख दुखे सनातनस्तं प्रभुमाश्रयामि अंगश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दिष्टकेन्दीवरम् जाड्यं जागुदरोचिसं विदधतं पट्टं वरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं तिलसद्दामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जल्भुजं ध्यायेम् दामोदरं तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मां भजामि राधां वरपिन्दनिद्रां स्मरामि राधां मधुरसुदास्यां भजामि राधां ततो ममन्नासुकर्णकाः। आज हम लोगों का ब्रजमंडल 84 क्रोश परिक्रमा के अंतर्गत 16वां दिवस है। आज सवेरे से और शाम तक अभी अन्नकूट महोत्सव हुआ को गोवत्स ब्राह्मण हरि गुरु वैष्णव और गिरिराज जी की पूजा हुई। ये सब गिरिराज गोवर्धन के अंग है। गायों की पूजा होनी चाहिए, बछड़ों की, और ब्रज में रहने वाले वैष्णव ब्राह्मण की भी पूजा होनी चाहिए। और इसके बाद में अन्नकूट गिरिराज गोवर्धन का अभिषेक और तत्पश्चात अन्नकूट महोत्सव होना चाहिए। हम लोगों का सब कुछ हुआ, केवल एक गो पूजा रह गई, किसान से याद नहीं रही, भीड़ में पीले फल भी हम लोग सवेरे देख कर याद रखेंगे। गाय देख लिया ना बछड़े समय और उसकी पूजा करें। गो कीड़ा होती है, गायों को कीड़ा कराते हैं, खिलाते हैं। गिरिराज जी के महिमा के संबंध में उनके दो स्वरूपों का हम लोगों ने विवेचन किया। एक गिरिराज उपास्य तत्व, विषय उपास्य तत्व, और दूसरे आश्रय उपास्य भगवान। एक आश्रय एक विषय, इनको गोपियों ने हरिदास वज्र कहा है। और राधिका जी हरिदास वज्र, गोपियों ने भी गोपिका दीवी तो हरिदास वज्र, और राधिका उदितम श्री राधिका भक्त। कृष्ण ही गोवर्धन हो गए यह है, और ये गोवर्धन ही कृष्ण के परम प्रिय सेवक भी है। सेव्य और सेवक दोनों अभी भी इनके संबंध में हम लोग बदलाएंगे। अभी स्थानीय एक भागवत वक्ता है, बहुत अच्छे, ये कुछ इन सब के चीजों के तत्व में कुछ उपदेश देंगे। ब्रजवासी है तो गोवर्धन नहीं रहते हैं, हमारे समीप ही रहते हैं। तो अभी ये कुछ अपना वक्तव्य रखेंगे और इसी के माध्यम से हरि गुरु वैष्णव और गिरिराज जी गोवर्धन के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें।
गोवर्धन का अर्थ होता है गौ वंश की वृद्धि हो, वास्तव में भगवान के नाम तो अनेक हैं, लेकिन भगवान को अपना सबसे प्रिय नाम गोपाल लगता है। सारी दुनिया भगवान की पूजा करती है और भगवान ने गाय की पूजा की है। जब गाय को कष्ट होता है तो गोपाल को भी कष्ट होता है। जब गाय माता प्रसन्न रहती है तो गोपाल भी प्रेम से बांसुरी बजाते हैं। इसलिए सबसे पहली तो निवेदन तो हम ये करना चाहते हैं कि आज हम सभी ने गौ पूजा की है, केवल एक दिन के लिए नहीं, अपने सारे जीवन में हम हमेशा गाय माता का सम्मान करें, गौ सेवा करें। आज जो हम संतों को प्रणाम कर रहे, केवल आज ही नहीं, जीवन भर हमारा मस्तक श्रद्धा से संतों के चरणों में झुका लेना चाहिए। कई बार हम जब सत्संग में बैठते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे मन में आती हैं, लेकिन जैसे ही हम सत्संग से बाहर निकलते हैं तो अच्छी बातें धीरे धीरे निकल जाती है। कितने लोग होते हैं जो ज्यादा सुनते हैं और थोड़ा समझते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सुने और ज्यादा समझे तो जीवन सार्थक होता है। वास्तव में ज्ञान वही धन होता है जो केवल बुद्धि में ही नहीं बल्कि सारे जीवन में हृदय से जुड़ा हो। जब तक ज्ञान हृदय से नहीं जुड़ता जीवन सुरक्षित नहीं होता। हम बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने मुंह से कहते हैं, लेकिन हमारे हृदय में अगर कपट भरा है तो उन अच्छी बातों का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे कागज के फूल में सुगंधि नहीं होती, इसी तरह जो केवल अच्छी बात में बोलता है, अच्छा आचरण नहीं करता, उसका जीवन उस कागज के फूल की तरह निरर्थक होता है। केवल ऐसा होता है जो देखने में अच्छा लगता है, किसी काम का नहीं होता। मेरे भाई बहन, मैं गुरु महाराज के आशीर्वाद से आपको यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन में गाय माता का सम्मान करें। श्री गिरिराज जी ने पुनः पुनः आते रहे और इसी तरह गिरिराज पूजा मिलजुल कर एक दूसरे को सहयोग करते हुए आप गौ और गिरिराज की भक्ति जीवन भर करें। ये गिरिराज पूजा की जो कथा है, जब माँ यशोदा ने कहा आज इंद्र पूजा होती है तो भगवान श्री कृष्ण बोले, माँ इंद्र की पूजा हम क्यों करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो माँ ने कहा कि हम इंद्र की पूजा करते हैं तो इंद्र देवता प्रसन्न होकर बरसात करते हैं, उससे अन्न पैदा होता है, हरी हरी घास पैदा होती है, जिससे गाय बछड़े प्रसन्न रहते हैं और हम लोगों के प्राणों की रक्षा होती है। लेकिन भगवान बोले, माँ कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विधीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव अभिपद्यते। माँ, ये जीव कब सुखी होता है? जब सत्कर्म करता है। हमें अगर वास्तविक सुख चाहिए जीवन में तो हमें सत्कर्म करना होगा, और सत्कर्म कब करेंगे? जब हमें सद्बुद्धि आएगी। जब तक सद्बुद्धि नहीं आती तब तक जीव सत्कर्म नहीं करता। अब सद्बुद्धि कहाँ से आएगी? जितना सत्संग करोगे, जितना गुरु महाराज के चरणों की भक्ति करोगे, उतना ही आपको सद्बुद्धि प्राप्त होगी। तो अगर जीवन को महान बनाना है तो उसका एक ही मार्ग है, सत्संग किया जाए, संतों की सेवा की जाए, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। रेडियो जब भगवान ने कहा मैं यशोदा से मैया आज तो हम सब मिलकर गिरिराज पूजा करेंगे, नंद बाबा ने कहा लल्ला अगर इंद्र देवता कुपित हो गए तो फिर क्या होगा। बाबा आप चिंता मत करो, जिस गिरिराज की हम पूजा करेंगे वही गिरिराज हमारी रक्षा भी करेंगे, और सब ब्रजवासी अपने अपने शीश पर पकवान मिठाइयां रखकर गिरिराज पूजा को चले। जैसे आज आप लोगों ने अपने मस्तक पर पकवान मिठाइयां रखकर गिरिराज पूजा की, वास्तव में ऐसा ही दृश्य उस समय हुआ था जब सब ब्रजवासियों ने मिलकर गिरिराज पूजा की थी, और जब गिरिराज का दर्शन किया तो एक भजन जो हमारे ब्रज में चलता है गिरिराज जी का, आइए हम धीरे धीरे उस भजन को बोलते हैं। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो, श्री गोवर्धन
Thank you.
कुमारिता नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज भाई मम प्रभु श्री गिरिराज भाई मम प्रभु श्री गिरिराज भाई। और भगवान की प्रार्थना करके अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा। प्रेमियों भाई बहनों, आज हम धन है जो पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में हम सब ने देव करके राज पूजा की और श्री गिरिराज जी का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ। इन संतों के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए वाणी को विराम देते हैं। बोलो श्री गिरिराज।
जाना तो नहीं है ना, थोड़ा सा बैठेंगे ना। हाँ बैठे बैठे रहे। ठीक एट नाइन drama play only 15 minutes what drama
Dhan Gati.
Oh and when Prahlad Charitra
coming Prahlad now sick so after about 4 days
he will be okay
another Prahlad
that Gard is sick
yeah
oh
अभी रही हमारे श्रद्धास्पद भागवत वक्ता पंडित जी ने श्री गिरिराज जी की महिमा के ऊपर में कुछ अपने विचारों को व्यक्त किया। थोड़ा सा विचार करेंगे, भागवत में ऐसा आया है कर्म से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं और कर्मों में ही विलीन हो जाते हैं। इन्होंने ये बतलाया, इसलिए अच्छे कर्म किए जाए, सदकर्म किए जाए। भगवान तो ये कहते हैं और भक्त लोग क्या कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी ने कहा कर्मण्याधिकारस्तु जपन्न कर्मण्य आरभमानी दुःखोत्तय सुखाय च पश्चेत् पाप विपर्यासं मिथुनीचारिणां विना कर्मण्य आरभमानान। कर्म को जो आरंभ करते हैं, कर्म के द्वारा जो सुख पाते हैं, वे मिथुनी रूप में, युक्त रूप में अथवा अकेले वो कर्म करते हैं, सुख के लिए ही कर्म करते हैं, किंतु कभी भी सुख नहीं मिलता, कदापि सुख नहीं कर्मों से मिलता। गीता में भी बतलाया यज्ञार्थार्थ कर्मणो लोको एवं अन्यत्र कर्म बंधनम्। भगवत संबंधी यज्ञ, यज्ञ माने विष्णु वही यज्ञ, यज्ञ संबंधी अर्थात भगवान को तृप्ति के लिए उनकी सेवा के लिए यदि कर्म है तो ठीक है, अन्यत्र कर्म बंधनम्, कर्म सब समय बंधन होता है। और भी बताया है जयपन्य अनबिंदा विमुक्त भावाद विशुद्ध बुद्धे आधुर्य कृष्ण कृष्ण पदम ये बताया क्या? कर्म सब समय अपवित्र है, बंधन का कारण है। अरे इस कर्म की बात क्या है? निष्कर्म अपि अच्युत भाव वर्जितम्। निष्कर्म ज्ञान भी अच्युत भाव से यदि वर्जित है उसमें अच्युत की सेवा इत्यादि का कहीं भाव मिश्रित नहीं हुआ तो वो भी त्यज है, अतंत है। यहां ये भक्तों के उद्गार है। श्रीमद् भागवत में तो कर्म को सर्वदा ही अपवित्र माना है। ऐसी दशा में कृष्ण कहते हैं जो कर्म करो, कर्म से ही प्राणियों का उत्पन्न होते हैं और फिर उसी में विलीन हो। बात ठीक है, जीव चेतन है, ईश्वर अंश, जीव अविनाश, चेतन अमर सहज सुख राशि, सुख की राशि है, सहज भगवान के साथ ही उसका जन्म है, चिन्मय है जीव चेतन। किंतु व्यास जी ने समाधि में देखा जी वो भगवान को भूल करके और नीचे उतर रहे हैं, और जो भगवान के का स्मरण करते हैं वो भगवान को पा जाते हैं। भगवान से विचित होना ये जो कर्म है, इसलिए प्राणी इस जगत में आते हैं कर्म के वजह से, और कर्म यदि समाप्त हो जाए तो बस काम बन जाए। निष्कर्म से भी हो नहीं ज्ञान से होगा, ब्रह्म ज्ञान से भी नहीं होगा, भक्ति तत्व के ज्ञान से हो सकता है। इसलिए गीता में हमारे भक्तों ने गीता में भागवत में पुराणों में शास्त्रों में वेद परिषद में जो कहा है कर्म के विषय में वो ठीक कहा है, किंतु कृष्ण जो कह रहे हैं उसी कर्म के लिए कह रहे हैं। भगवत पूजनम यही कर्म, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास सब ठाकुर, ये जो भगवत संबंधी जो कर्म है भगवान के प्रति निवेदन करना, भगवान की कथा सुनना सुनना कर, इतने ये जो नौ है ये नम इति पुनसार पिता विष्णु भक्ति नवलखन गुरु के चरणों में अर्पित होकर तब भगवान के चरणों में वो किया जाए, भगवान के लिए किया जाए, तब तो भक्ति है ना, तब भक्ति नहीं, श्रवण करना ही भक्ति नहीं। यदि गुरु पदाश्रय नहीं किया, श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, तो क्या होगा वो कर्म, सीधा साधा वो कर्म, उस कर्म के द्वारा भगवान किया। इसलिए इसका सामंजस्य इस रूप में करके तब कर्म को कृष्ण के मुख से जो कहा गया है कर्म तब समझना चाहिए। इंद्र कृष्ण को बाचाल इत्यादि कितना न कहा, कृष्ण मैया के पास में गए, पंडित जी ने बताया बहुत अच्छी तरह से विस्तार के ऊपर, मैया के पास में गए, मैया आज ये पकवान मीठे 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 बड़े सुगंधित बन रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं, आज क्या मेरी वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, जाओ जाओ अभी जाओ यहाँ से। और वो बड़े प्रेम के साथ पूछने गए थे, मैया ने उनको भगा दिया। तब पिता के पास में गए, पिताजी से ये सारी बातें, कृष्ण ने ऐसे तर्क उठाए पूर्व पक्ष, मैया जहां पर इंद्र की पूजा नहीं होती क्या वहां पर पानी की वर्षा नहीं होती, और भी लॉजिक दिखलाया ज्ञान की, तर्क वितर्क किया। तो बाबा ने देखा जैसे उसको साधारण सा, ओ ये तो बड़ा तर्क वितर्क करके ठीक करता है, अच्छा तो ठीक है। उन्होंने कहा जैसे ये तो घोड़ा गैया चुराता है कितने बार, स्त्रियों के प्रति आसक्त रहता है, कितनी बार अहिल्या इत्यादि का भ्रष्ट पवित्र करने के लिए चेष्टा, कितनी बार और देखा गया चंद्र और बृहस्पति इत्यादि देवताओं के साथ मिलकर बड़ा दुराचार भी करता है, और फिर भागता है भी देवता। जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है दूसरों की क्या रक्षा कर सकता, पहले तो अपनी रक्षा तो करे, अपना सदाचार हो, इसलिए ये क्या करेगा। सगर महाराज जी का घोड़ा चरा दी चुरा, ये कोई उचित था, अरे इनका नाम है गोवर्धन, गोवंश का वर्धन करते घासों से तीर्णों से सुंदर सुंदर पानी से सुंदर सुंदर पेड़ पौधे इत्यादि से वर्षा होती है, और फिर इस बात से तर्क और वितर्क के द्वारा अपने बाबा जी को बाबा को संतुष्ट करके और इंद्र की पूजा करें। इंद्र ने उन्हें कहा बाचा स्तब्ध बालिश बाव ऐसे ऐसे, किंतु सरस्वती जी ने उसके अर्थ अलग कर दिए। उसने अच्छा है बचाल पांच बजे देख लगातार मूसलाधार वर्षा हुई, खूब मूसलाधार हुई, सारा ब्रज पानी में डूब गया, ठंडी हवाओं से सब कांपने लगे, त्राही त्राही करने लगे। तब इसके बाद में लोग कृष्ण को पुकारने लगे, कृष्ण कहा जाओ मेरे साथ में। और उस समय में ब्रजवासी सारे उनके पास में आए, बिना प्रयास के ही गिरिराज जी को कब उठाया कब क्या हुआ पता नहीं चला, उठा कर कनिष्ठ उंगली पर रखने का भी एक विशेष महत्व है। क्या महत्व है? बाएं तरफ में शक्ति रहती है, एक तो बाया हाथ बाएं का भी बाई कानी कनिष्ठ सर्व कनिष्ठ उंगली, कनिष्ठ उंगली पर नहीं उदाहरण किया, नख पर गिरवर धारी अपने हाथों की अंगुली के नख, मैं कहता हूं तो नख नहीं नख प्रभा के ऊपर में धारण कर दिया, नख प्रभा के ऊपर। वो प्रभा क्या है? प्रभा तो शक्ति है ना, तो शक्ति ये कौन धारण किया है? ओ राधा जी शक्ति है, उन्होंने धारण कर दिया। मालूम है ये कृष्ण धारण, कृष्ण कुछ नहीं करते इच्छा करते हैं, बाकी सब कौन करता है? बाकी उनकी लागनी शक्ति जोग माया इच्छा शक्ति कृपा शक्ति ये सब शक्तियां काम करती है। कृष्ण तो बस निठल्ले ही समझो, बस इच्छा करते हैं ये होगा और बस सोए सोए आराम के साथ में जगत हो और जगत हुआ ध्वंस हो बस भक्ति हो का प्रचार हो। मैं अभी जगत में जाना चाहता हूं, जो मैंने सारी व्यवस्था कर दी और कृष्ण के रूप में पधार गए। कृष्ण का रूप अरूप नहीं है, बल्कि जो कृष्ण रूप में आते हैं जब आते हैं चाहे करोड़ों कल्पों के बाद आए इसी रूप में आए, रूप नहीं बदलता, राम का रूप नहीं बदलता, है निराकार किंतु रूप धारण करके आ गए भक्तों की इच्छा के अनुसार, यह गलत है। भक्तों का इच्छा रूप में राम के भक्तों की इच्छा हुई जो राम आए, वही कृष्ण ही राम का रूप धारण करके आए। इस प्रकार से भगवान की महिमा है। हमारे गोस्वामी ने उनकी महिमा बहुत लिखा, आई थिंक आई हैव स्पोकन सो मच सो यू शुड राइट टू एंड देन आई पंडित जी ठीक बोला, ठीक चल रहा है, तत्व गंभीर विषय है। आया करेंगे।
So, Sri Guru Maharaj, Apology very nice, speaking very clear, very simple. The Guru Maharaj is saying one thing you want to consider a little more deeply. By satsanga, by good association, one attains satguri, good intelligence. By satguri or good intelligence, one can enable one to perform satkarma, or good activities. So what is karma? What is good activity? By karma, one can become degraded, or one may become elevated. But we should understand why we do satkarma or vikarma, or simple activity, that we cannot be happy anyhow. Srimad Bhagavad Gita giving that, Gagnat Kamadam Yata, Sri Krishna says, O Arjuna, any activity not performed as a yajna, as a seva to me, with Bhagavad Buddhi, this causes bondage in this material world. So Srimad Bhagavatam is saying, from top to bottom, karma is always muddy and dirty. It cannot offer us any real satisfaction or any real happiness. Because after all, this jiva, this spirit soul, is not material. Jiva is chetana, or conscious, spirit, and the spirit. Ishwaranta jiva namanasi chetana manasahasukarasi. It is not a product of this material world. So Vyasadeva in Bhagavatam, he is also seen in his samadhi. He has seen how the pure spirit soul, by turning his face away from the Supreme Personality of Godhead, is captured by Maya. At that time, the jiva considers himself a product of this material world and suffers birth, death, old age, and disease. So karma is not enough. And this karma means karma performed without fruitful activities. This is also not sufficient to liberate the soul, to give him happiness. Even jnana is not enough. Only those activities performed as bhakti, with Bhagavan Sambandhi Bhav, in relationship with the Supreme Personality of Godhead, only that can give us happiness. Only that can give us pure result. What type of karma we should perform? We should perform Bhagavan Sambandhi karma, or bhakti. Like Sri Kulatma just said in Srimad Bhagavatam, Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Parasevanam, Acham, Vandanam, Sarkim, Atmanam, Vedanam, Itikam, Savitar, Vishnu, Bhakti, Chagnar, Rakshana. He is saying, Vishnu, one should take, perform, hearing, chanting, remembering, offering of prayers, and Parasevanam, serving at his feet, and complete surrender to the Lord. Making friends with him. This is called ninefold process of bhakti. But this ninefold process of bhakti must be performed under the shelter of the bona fide guru, sadguru. Otherwise, this cannot be called bhakti. It can only be called karma. So ninefold process of bhakti, without sadguru, is simply karma, nothing else. So, one day, Krishna woke up and he saw, oh, Madhya Soda is making so many types of pakoras. Malpuras, rubbery, pushpana. So he went to his mother and said, oh, is today a special day? Is it my birthday perhaps? So mother said, hey, get out of here, don't disturb. So Krishna went to his father, oh no, Baba, Purvapaks. But he asked, what is the history? What are you doing today? So Nanda Baba said, today is the worship of our Kuru Devata, our family, Ishtadev, Indra. So Krishna gave answer. This tarka vitarka means argument. Giving too much argument to Nanda Baba. Oh, why are you worshipping Indra? Don't you know that Indra is very swati, means he is only self-interested? Don't you know how many times he got in trouble chasing other people's wives like Aholya? He disrespected his guru like Brihaspati. He stole the horse meant for the Aswamedha Yajna, and he caused so many disturbances here. Therefore, in his own life, he has so many problems. So if he himself has so many problems, then how can he save us? Also, are you saying only those persons who perform puja to Indra get water? But what about the ocean? What about the desert? What about those countries that don't know about Indra? It also rains there. So Krishna is giving many types of arguments, and none of them are satisfied. Okay. So, the puja was changed from Indra to Govardhan. So Indra became very angry and began to abuse Krishna. Rabacha, Stava, Balisa, Pandita. Krishna? No, Indra's name. Oh, Krishna is very childish. Balisa, foolish, Pandita. He thinks himself very great. And many, many abuses was given. At that time, Saraswati came on his tongue. This was all glorification. Indra became angry. He sent heavy, heavy rains and a freezing cold wind. That time all the Vrijavasis came to Krishna. Krishna said, come to me. Giriraj will save us. And very easily, in 1 second, he lifted Govardhan in his left hand with the left pinky of his left hand. Why? That is called left side means Shakti. Shakti manifests from the left side. So Krishna is showing here from the leftmost side of my left part of my body. And by the nail of that, the smallest portion of my left finger, I am lifting Govardhan. Meaning I am not lifting. Srimati Radhika is lifting. Because at the end of the day, Krishna is only Ichiman. He can only desire. And how will he fulfill his desire? Therefore, he takes shelter of his energies, and his energies fulfill all his desires. His many, many energies, shakti, like yoga maya, ichi shakti, ladini, and then it all condensed in the form of Srimati Radhika. So Krishna desires that everything is performed simply under anusara, or simply under his desire. Krishna desires to create the world. It's created in a second by his energies. Krishna desires to destroy the world. It's destroyed in a second by his various energies. Krishna desires that he can go to the material world. In 1 second, his yoga maya arranges all his pastimes. So some people should understand that Krishna, whenever he appears here at the end of one day of Brahma, he appears in his original, unchanged, eternal form. Some people say that the Supreme Absolute Truth is nirakar, devoid of attributes. He has no form, no qualities, or no name. But simply to please his devotee, he assumes a form. Ramas, this is completely wrong conception. The Supreme Lord has an eternal form. Krishna has become Ram. Krishna has come in the form of a stringer. Krishna himself has come in the form of all incarnations. All these incarnations are eternally situated in the spiritual world. Go, Premanandi.
हमारे पूज्यपाद गोस्वामियों ने विराज जी की बहुत महिमाओं का वर्णन किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी ने वर्णन किया। गोवर्धन वास प्रार्थना दश विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गोवर्धन अष्टक और भी बहुत से अष्टक इत्यादि है। सनातन गोस्वामी ने बृहद भगवत का अमृत में गिरिराज जी का बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया है। पहले हम लोग वर्णन कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का बड़ा सहज सरल है, आप लोग सभी लोग समझ सकते हैं। कृष्णा प्रसादेन समस्त शैल साम्राज्य माप्नोति जैरिणोति सकृत जह प्राप बनि साक्षात गोवर्धन। कृष्ण प्रसादेन समस्त शास्त्र रूपस्तथा भागत शक्रस्य जह पराप बलिं सशास्य गोवर्धनो मे दिशताम। हे गिरिराज गोवर्धन, हे अतुल प्रभाव विस्तार करने वाले महात्मा महिमाओं से भरपूर जितने भी पर्वत हैं उनके राजा के स्वरूप है, सम्राट आप हैं। कैसे सम्राट हो गए? कृष्ण प्रसाद, कृष्ण के प्रसाद से वो सम्राट बन गए। साचे बताओ मदर कौन बोलते हैं तो ये सम्राट हो गए। वैरिणोपी, अरे इंद्र बैरी के रूप में मूसलाधार पानी और वज्रपात करने लगा। और उस समय में कृष्ण की आपने जो सेवा की, उसी सेवा के प्रसाद से सारे भूमंडल के सारे पर्वत श्रेणियों की के आप सम्राट है। इंद्र ने बात वर्षा की, वज्रघात किया तो गोवर्धन को कैसे लगा? स्वप्रेष्ठ हस्तम भुजसौ कमार्ज सुखानुभूते रवि महेंद्र वज्र हतिमाप्यजानन गोवर्धन। कृष्ण के हस्त कमलों पर विराजमान रह करके अत्यंत ऐसे आनंदित उल्लास हो गए, ये सब कुछ भूल गए, देह और दैहिक भूल गए। इंद्र का वज्र भी उनके ऊपर में गिर रहा है, किंतु मानते हैं क्या है, खुजला आनंद में भरपूर है, उनको कुछ पता ही नहीं। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति मिल जाए और उसका आदर कोई प्राप्त हो जाए तो उसकी दशा होती है। जत्रैव कृष्णो विषभानुपुत्र दानं गृहीतुं कलहं वितेन सुते सुयाजत्र अभयतश्री गोवर्धनो मे। जत्रैव कृष्णो विषभानुपुत्र दानं गृहीतुं कलहं वितेन, जहां पर रसिक शेखर कृष्ण गोपियों में भी मुख्यतम जो अपने सखियों से सहेलियों से परिवेष्टित थे, कलहंग बीते ने जबरदस्ती टोल टैक्स लिया। कैसे? भागवत ऋषि का जिम्मे गोविंद कुंड में हो रहा था और कृष्ण अपने सखाओं के साथ में यहां पर डटे हुए थे दान घाटी। उसमें पूरा जंगल बंद था भरा हुआ, यह शहर नहीं था, इसको मानसी गंगा के ऊपर ही बताते थे। बस दो एक आदमी मुश्किल से उस पार से इस पार दान घाटी में आ सकते थे, जैसे कि अभी भी बरसाने में साकरी को ऐसे भी हो। दधी दूध पकड़ और अधिकांश घी मक्खन सब ला रही थी यज्ञ के संपादन के लिए। कोई कोई कहते हैं बिक्रे तुकामा खिल गोपकंड मुरारी पादार्पित चित्त विद्या, क्या मोह बसाद ओचत गोविंद दध्यादि मोह बसाद ओचत। तो यहां विक्रेतु कामा लिखा है, अरे बुद्धि के पहाड़ हो, बुद्धि के पहाड़ विक्रेतु अखिल गोप कन्या। कृष्ण को अपना सब काम बिक्री करने के लिए, कामा क्या बेचने का जा रही और उसका मूल्य क्या है, जय के लिए ही विश्व में कृष्ण दे सकते हैं उस मूल्य को चुका रहे। बड़ा सिद्धार्थ है, लोग कर देते हैं, क्या करते हैं गोपियां राधिका ललिता विशाखा दधी बेचने के लिए बाजार में मथुरा के बाजार में आते, वाह 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 कैसा सुंदर विचार। नंद महाराज नंद महाराज तो 7 लाख गायों के मालिक, 9 और ये विश्वभानु महाराज 11 लाख। ऐसे सब एक एक से गोप पड़े हुए हैं, हम लोग जानते नहीं है। वो श्रीदान सुबल मधुमंगल इत्यादि साधारण गोपों के पुत्र नहीं है, ये कैसे है? दाम श्रीदाम सुदाम वसुदाम स्तोकृष्ण लवंग उज्ज्वल अर्जुन कोकिल भृंग बसंत सुबल और मधुमंगल, ये तो प्रिय नर्म सखा है ऊपर वाले हैं। और इसके नीचे ने जो 4 प्रकार के और जो सखा करोड़ों हैं गाय इतनी, और इनके घर की गोपियां नंद विश्वभानु महाराज की उपानंद इत्यादि, ये जाएंगी मथुरा में कंस के राजा के भी बेचने के लिए। नहीं, बिक्रे तु कामा खिल गोप कन्या मुरार पाता पिता चित्त दद्धा दिनो प्रसाद ओचत गोविंद दा। ये तो कृष्ण के चित्त को लेने के लिए, किसके द्वारा? अपनी कामनाओं के द्वारा, सेवा की वासना के द्वारा ले लेने के लिए जा रही थी। तो वो यहाँ पर जब आई कृष्ण रोक दिया। पहले ये सकरी खोर का जो टैक्स है उसे दे करके जाना पड़ेगा, दान घाटी दान दान दे करके जाना पड़ेगा। पहले दान कहते थे, दान खाटी और दान। सुनते ही ललिता जी आग बबूला हो गई और विशाखा भी आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा टैक्स किस चीज का, किस चीज का? मेरा राज्य है, निश्चिंत से कृष्ण बोले मेरा राज्य है। और तेरा राज्य कब से हुआ? तेरे बाप की है न बपो की है न, अभी तुमको खरीद मिली, अभी खरीदा रजिस्ट्री किया है? या तुम्हारे पाप दादों के परदादों की है? परजन्य ने खरीदा या कृष्ण ने? बताओ। तो कृष्ण कुछ फिर चिंता करके बोले, तुम तो बेकार की झगड़ा और विवाद करती हो, तुम तो जानती हो हमारे बाप परदादों की तो नहीं है और हमारी भी ये परदादों की ये संपत्ति नहीं है। हाँ, मेरी शादी वृंदा से हुई, वृंदा जी इस वृंदावन की अधीश्वरी है और उन्होंने वृंदा जी के जब मेरी शादी हो गई, मेरी बहू हो गई, तो अपने आप पत्नी की संपत्ति मिल गई। इस संपत्ति इस तरह से मैं इस संपत्ति का ब्रज का मालिक हूँ और ये टैक्स अदा दान जरूर लूंगा, तुम जिस किसी भी रूप में सौ। गोपियां ताली बजा करके हंसने लगी और बोली, अच्छा अच्छी बात है, तुम वृंदा के पति हो, वृंदा जी से शादी हुई। अरे वृंदा जी कहाँ पे? और तो यही पता है, बुला बुला। वृंदा जी को बुला लिया, वृंदा जी से कहा, अरे तुम्हारी शादी इस काले कलूठे से अंतर बाहर काला काला कुत्ता चोर लंपट इसके साथ में हुआ, इसको तो मैं पहचानती भी नहीं ये कौन है। हाँ, नाम सुना है ये धूर्त चोर लंपट शिरोमणि है, मैंने सुना है कि। अच्छा तो इसे हमारी शादी कैसे होगी? मैं इसे शादी कदापि नहीं किया और न करूंगी। ये तो ऐसा है लंपट जे सारी ब्रज की स्त्रियों को भी अपनी बहू समझता है, अपनी पत्नी समझता है, किंतु ब्रज की ऐसी कोई लड़की नहीं है, ब्रज भर की सारी लड़कियां इससे कोई भी शादी नहीं करनी चाहती, ये तो तुरंग है। तुरंग ब्रह्मचारी है, लड़की नहीं मिलती है इसलिए शादी नहीं रहते, नहीं तो कभी की शादी ये कराता, किंतु ब्रज में कोई नहीं। ऐसा देखो, ऐसा मत कहो, मैं परम धर्मात्मा आदमी हूँ। ओहो, ये तो नई बात आपने कही, ये धर्मात्मा हो। अच्छा धर्मात्मा हो, हाँ ये तो बात। जन्म के साथ ही साथ में एक उतना मैया को मारा जो मैया बन करके आई, कितना धर्मात्मा की काम है। स्त्रियों को मारना पहले से आरंभ किया और ऐसे धर्मात्मा हूं कि ब्रज का कोई घर नहीं बचा जिसमें मक्खन की चोरी तुमने नहीं की। तो ये धर्मात्मा तो ये चोरी करते हैं ना, और ऐसा कोई दिन नहीं है जो झूठ नहीं खाया, नहीं बोला मक्खन खाया। मैया मैं नहीं मक्खन खायो, मैं नहीं मक्खन खायो। अच्छा किसने खाया है? डांटने लगी तो कृष्ण कहते हैं, मैं समझता था जो मैं समझता था कि तू मेरी मैया है, मालूम है कि मैं जाया हूं दूसरे के किसी के ही से और तुमने हमको पाला पोसा, मैं तेरा बेटा नहीं दूसरे का। अरे सवेरे होते ही तुमने गायों के साथ में हमें चराने भेजा, शाम हो गई अब आ रहा हूं तो चोरी का तुमने किया। कृष्ण जरा थोड़ा सा रोष में हो गए, क्रोधित हो गए, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं शायद। यशोदा जी ने देखा, यशोदा जी की आंखें भर आई, देखो तुम दूसरों को बेटे दे, मैं प्रतिज्ञा करके कहा तुम हमारे इष्ट देव नारायण की शपथ, ये तुम हमारे बेटे। तब यशोदा जी क्या कहती है, कृष्ण का यशोदा जी तूने माखन नहीं खायो, भैया मैं नहीं, ये तो कृष्ण कर मैया मोरे, पहले तो कह रहे थे मैं नहीं माखन खायो
और यशोदा जी कह रही हैं जैसे तुम नहीं मक्खन खाओ। अब यशोदा जी ने सूर पलट करके कहा तुमने माखन नहीं खाए, और कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही माखन खाया। इस तरह से तो यहां पर ऐसे ही तुम बड़े धर्मात्मा हो और सत्यवादी हो, और हमें याद है हमने सुना कि लड़कियों को विवस्त्र करके उसके कपड़ों को लेकर के हंसते हुए कदम को वृक्ष पर चढ़ गए, ये तो परम धर्मात्मा का ही काम है। और क्या नंगी लड़कियों को देखना ये तो परम धर्मात्मा, कौन बहू लगती है कि कौन बेटी लगती है कि क्या है। और बैल को मारना तो ये उचित नहीं, तो विश्वासुर का बैल का वध किया ना, अब दूसरों के बहुओं बेटियों को लेकर के रास रचाता है रात में जमुना के किनारे अकेले, कैसे धर्म आत्मा का। कृष्ण बोले जी अब रहने दो, मैं ये सुनना चाहता हूं, मैं तो जरूर टच हो गया। तब उन्होंने गति और दूध का कुछ दिया, टैक्स दिया। अरे हम भागुरी के लिए यज्ञ में ले जा रहे हैं, तब सुनते हैं कृष्ण चमक गए, भागुरी के लिए ले जा रहे हैं, बेचने के लिए नहीं, हमने सोचा बेचने के लिए, तो मैं मोल दूंगा। वो मोल क्या था, योग्य के प्रति प्रेम देकर के ले जाए, यही प्रेम दिया ना कृष्ण ने, ये मोल दिया, ये जो बातें हो रही है ये मोल दे करके, और गोपियों को ने उनको टैक्स दिया। इस तरह से बिक्रे तु काम फिर नहीं, जत्रैव कृष्णो वृषभानुपुत्र दानं गृहीतुं कलहं विदे सुते स्पृहा। मैं ये सब सुनने के लिए स्पृहा हो रही हूँ, क्यों कैसे सुनोगे यदि आपके निकट बैठे, इसलिए गिरिराज दुबारे आप कृपा हमारे ऊपर सुनत्वा सरस सासु समी रहस्य जत्रैव नीपादि पराग धूलि आलोलयन खेल चारु शस्त्री गोवर्धनो हे गिरिराज गोवर्धन दया स्नत्वा सरह सासु समीर मैंने हवा पवन तत्व हवा समीर धीर समीर ये मानसी गंगा में स्नान किया तो स्नान करने से सुशीतल हो गई, सुशीतल होने के बाद में स्नता सरह सासु समीर हस्ती जय त्रैव नीप आदि पराग धूलि, और उस हवा में क्या है कदम्ब इत्यादि के पराग की धुनिया है, ये कदम्ब क्या है राधा जी का स्वरूप है। तो ये भरा हुआ उसमें उसके द्वारा सर्गुण है, सुगंध को लिया तो वो कैसे हो गई अब धीर दूसरे बने लड़खड़ाती हुई अब चलने लगी वो हवा, और कृष्ण के अंगों में लग रही है वो हवा। गिरिराज गोवर्धन आप इससे इस हवा से इस सुगंधि से भरपूर कस्तूरी का भी शैतन तुम क्या यहाँ पर हिरणे कस्तूरी मृग सब विचरण कर रहे हैं और कहीं विश्राम तो नहीं किया। ओ मालूम होता है जो विश्राम किया, इसलिए कस्तूरी मृग की जो सुगंधि है आपके इस प्रत्येक शिलाओं में लग गई है, ऐसी कोई शिला नहीं है जिसमें कि वो सुगंध नहीं कस्तूरी। ऐसे गिरिराज जी आपके चरणों में हमारा सब गिरिराज जी वंश प्रतीक ध्वनि अनुसार निदीक्ष वो जत्र हरि हिरण्य जानतो लभन्ते नहि विस्मितासि गोवर्धनो क्या कहते हैं वंश प्रतीत। यहाँ पर बांस के छोटे छोटे पौधे हैं, बांस न तो पेड़ है न छोटा पौधा, वो बीच का एक दरख्त कहो या एक पौधा है ऊंचा, वृक्ष की श्रेणी में भी आएगा, वृक्ष की श्रेणी में नहीं भी आएगा पौधा, किंतु बुल्ब नहीं है, लता भी नहीं, उसमें छेद होते हैं इसलिए बंसी बजती है, कहीं छेद हो गया किसी कारण से तो हवा भर करके बड़ी सुरीली सारे गाम पधनी सा सारे गाम पधनी अत्यंत सुस्वाद उसमें से निकल रहे हैं। अरे कहीं कृष्ण बंसी तो नहीं बजा रहे, इसका भ्रम होता है। गिरिराज गोवर्धन ऐसे बांस के बनों से परमंडित और सुशोभित हो रहे हैं, आप कृपा की एक कोर कटाक्ष हमारे तरफ में दीजिए। कृष्णो वृषभ जत्रैव गंगा मंगा, अरे जहां पर कृष्ण नवीन अभी नाविक बने हैं और नौका लेकर के खड़े हैं मानसी गंगा के तट पर, गोपियों पधारो पधारो, आपका स्वागत है हमारे नौका में पधारो, हम चंचल नाविक के पुरानी नौका में नहीं जाएंगे, हम तो दूसरे की नौका में, तो बड़े चंचल इसलिए नहीं जाएंगे। देखा जी और कोई नौका नहीं है, अब शाम हो गई है, रात होने वाली है, अब तो आ जाओ, और कोई दूसरा नहीं है। देखा जी सचमुच बद होकर के नौका में चढ़ी और बीच में लेकर के जब आया तो नौका पानी से भर गई, जीर्ण शीर्ण नौका, और ऐसे ऐसे कर रहे हैं जैसे नौका इधर से पानी भरा इधर से पानी भरा, डर गई गोपियां और कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण तो यही मूल्य चाहते थे। ऐसे गिरिराज जी आप जिसके साक्षी हैं, जिसके आपके उदर में गोवर्धन जी का गिरिराज जी का उदर है, ऐसी लीलाएं के आप साक्षी हैं, बिना भवित के हरिदास महान है? फिर एतत पठे जो हरिदास वर्ज, जो हरिदास वर्ज कृष्ण गिरिराज गोवर्धन की स्तव को स्तुति को प्रार्थना स्तंभ को जो श्रवण करता है उसको राधा कृष्ण के युगल में चरणों में प्रेम हो जाता है। राधिका माधव पदाब्ज दर्शन चपिंदित अचिरेन अचिरेन, अधिक देर नहीं लगेगा। ओ ये सुतंस ले रामचंद्र जी हियर, ओ तो ये सुतंस गिव हिम ए चांस, qualities and service mode Krishna is very pleased to you, he is very merciful to you, and that is why by his mercy oh now you are the king of whole universe.
By the mercy of you have pleased Krishna, by the mercy of Krishna you have become king of all the mountains.
Emperor, not king, emperor of the whole mountain in the whole world.
Emperor of all the mountains of all the world. How you have received this mercy? when Indra, he wanted to drown
even his enemy.
As his enemy. He wanted to drown Braj in water by heavy rain. At that time you served Krishna and Braj. You so easily got lifted in the hands of Krishna. And because you served Krishna and pleased Krishna, so you became emperor of all the world. Krishna, he is Rasik Shekhar, and he came here at Dan Ghati and he received texts from gopis. This pastime took place at Dan Ghati. So Gurudev is explaining this pastime. Bhaguri Rishi, he was performing a sacrifice at Govindpur, and he announced that whoever will bring curd, the girls who will bring curd, ghee, butter in this sacrifice, they will be always fortunate. So Bhagyashali, their houses will be always full of opulence and all. So all the gopis, they were bringing butter, curd, etc., keeping in a pitcher on their head from Barsana to this Govindpur. At that time, this place, which is called Dan Ghati, it was a very narrow valley, and hardly one or two person was able to pass through this way. Just as we see in Barsana that there is a place which is known as Sakari Khor. Very hardly one or two person can cross that place, and Krishna is standing there in the way. There are many people, they think that these gopis were taking all this butter and all, and they were going to sell it. The Gurudev is explaining here that why do they need to sell it? Sometimes they quote one verse from Srimad Bhagavatam, and it says, Vikrit Kama. The explanation comes.
Vikray tu kama. Vikray tu kama.
Not Bhagavatam. The explanation goes like this, that these gopis were not going to sell these curd. Why? What is the status of Radharani? She is daughter of Vishvanu Maharaj. He has 11 legs cow. Krishna has 9 lakhs cows.
He has palatial buildings.
Palatial buildings. The Sridham, Sudham, Madhumangal, all the
don't like a Raval. Prominent go.
Prominent go. King of Raval, Vishvanu Maharaj. Raval means landlord, king, a sort of king.
And now, his daughter may go to sell chhach.
No, they went to sell their cherished desire to sell Krishna, which is called Kaam. This was their reason to go, to take curd, ghee, chhach on their heads. In fact, they used to go to Bhaguri Rishi sacrifice. Krishna stopped them in way. I am king of this place, Vrindavan. You have to give me toll tax. And Lalita, she became angry. Till Gurudev is using word Agababuli Hobe. Agababuli, very much angry. How come you claim this place to be yours? How are you king of this place? What right you have got to ask for tax? And Krishna says, I am king of this place. How come you are king of this place? Have you bought this place? Or did it belong to your father or your forefather? और प्रजापति महाराज ही इज ऑनर ऑफ दिस प्लेस वृंदावन. कृष्णा सेज नो नो दिस प्लेस डजंट बिलोंग टू माय एंसेस्टर्स. इन फैक्ट I just got married to Vrinda and this place belongs to Vrinda because this is the place of Vrindavan. So I am king. I am honor of this place because my wife is honor of this place. You got married to Vrinda? How come you got married to Vrinda? Vrinda? And she was nearby. She came. Yes. Look, this black boy.
Abhi jana hai.
अभी जाना है रात हो जाएगी.
अभी अभी आया.
हाँ आधे घंटा हो गया.
This black boy claims that he has got married to you. Have you got married to him?
प्रेमानंद से जाकर के प्रसाद
ले लेते हैं. I have never seen him. I don't know him at all.
कहाँ मिलेंगे प्रेमानंद जी तू?
But I have heard about him. That is the most lumpet dhoor rascal.
प्रेमानंद से अच्छे पार्टी है तो बोलो जी तू प्रसाद दिए.
कहने दिवाची and he claims each and every girl of this breath as his wife. And frankly speaking, no girl is ready to get married to him because he is loose character person. He is lumpat. Then Krishna says, don't say like this. I am Dharmatma. You are Dharmatma? Dharmatma means a religious person. You are Dharmatma, religious person? Yes. Yes, we understand you are very much Dharmatma. Only when you are a child, only a few years old, you killed a lady. Very great Dharmatma. Then, 3 days only, you, 6 days only, you killed a lady because you are very religious person. And who was that lady? She came as a mother to you and you killed her. You are very great religious person. You are very religious person. Never tell a lie. And hardly any day goes when you don't tell a lie. Maya Mori, Mary Makan Pajam. Oh mother, I have not taken butter. I have not eaten butter. And Maya is saying that you have eaten butter. Oh Maya Mori, I have not eaten butter. Then Krishna says, look mother, probably I am not your real son. Early in the morning I go for a cow grazing and I come late in the evening. When I got chance to steal butter and you are putting allegation on me that I have stolen butter.
प्रसाद पाया था दोपहर का.
Then Krishna starts weeping that I am not your real son. Therefore, you are saying like this. And mother became emotional and she starts shedding her tears. Oh, no, no, my dear child. You have not eaten butter. And then Krishna, in the same language, said, oh, no, mother. I, me, he. It's I only who has eaten the butter. So, you are very much a religious person because you always tell a lie. There is hardly any house in Braj where you have not entered and stolen butter because you are a very religious person. Look at this religious person. He goes and he picked up the clothes of girls who were taking baths inside a pond in Jamuna River. And then he wanted to see them without clothes because you are a very religious person. Then you perform Ras Leela with the girls and wives of mother because you are a very religious person. Krishna says, I don't know all these things what you are saying, but this is fact that I will take toll tax. You have to give the toll tax. And Giriraji, you are witness of this pastime that Krishna is taking toll tax from gopis. And then gopis says, we are taking all these things to the sacrifice of Bhaguni Rishi and you have taken our butter and our curd, everything. Then Krishna says, oh, you are taking all this thing to Bhaguni Rishi? Don't worry. I will tell him. And this way, what gopis are doing? They are selling their curd and butter to Krishna exchange of love. You, Agiraj Govardhan, very cool breeze blows on you. Srila Gurudev is explaining what type of breeze blows. It goes and takes bath in Manasi Ganga. This breeze takes bath in Manasi Ganga and becomes cool. Then it touches Kadam tree. Kadam tree is nothing but a form of Radharani. And it becomes heavy, bearing the fragrance of that Kadam tree's flower. And when it becomes heavy, then it becomes dhir. Dhir means heavy, stern. And now it moves very slowly and slowly. Then it touches the body of Krishna. And when it touches the body of Krishna, and it becomes more fragranted. This way, all the stones of this Giriraj Govardhan, they are emanating the fragrance of
Kasturi.
Kasturi. Why? Because there are Kasturi Hiran. These deers who have Kasturi musk in them. And these deers are running here and there. They are not stationary. So they are leaving their fragrance in each and every stone of this Giriraj Govardhan Shila. Therefore, each and every Shila is fragrant with this musk of deer. There are very, very beautiful trees of bamboo. So Srila Gurudev is saying, these bamboos, they are neither tree nor plant. They come in between. They make a very beautiful type of forest. And such forest, these bamboos have some small holes in it. And when air passes through these holes, it plays like a flute, as if Sa Re Ga Ma. What do you call it? Do Re Mi? Do Re Mi. Sa Re Ga Ma Pa Dha Mi Sa. And it appears as if Krishna is playing on the flute. Hey Giriraj Govardhan, you present such a nice scenery. Giriraj Govardhan, you witness very beautiful pastime. You witness the pastime of Krishna. Krishna is standing on a boat as a boatman. And he is asking gopis, come on, I will take you across this Manasi Ganga. And gopis are saying, you are a chanchal boatman. Chanchal means?
Restless boatman.
Flickering minded boatman. We won't come in your boat. It is a dangerous thing to come in your boat. And then finally when they find that there is no any boat, then they are forced to go to their boat. And Krishna becomes very happy. He takes them very happily in his boat. His boat is very old boat. And just middle of the Manasi Ganga, this boat starts traveling. Krishna says, my boat is very big, very old. It can't bear your weight. And so it is traveling. When it is trembling, then gopis are becoming very much scared and they go and they embrace Krishna. This is what Krishna wants. Krishna receives his feast, boatman feast. And these are pastimes you have witnessed. Oh, Giriraj Govardhan. These are the Istamstuti. Whoever hears these Istamstuti, then what will happen? He will come. Any person who comes to Giriraj Govardhan, take shelter at his lotus feet and prays such type of istamstuti, then Giriraj Govardhan becomes benevolent and gives flame in his heart for Radha and Krishna Yugal. Gaur
Tirth Maharaj.
Ah.
Jaldi, jaldi. Abhi Tirth Maharaj ji sankshep mein Govardhan tattva और उनकी महिमा के संबंध में 15 मिनट हुए।
बोले
तदनंतर उपस्थित पूजनीय वैष्णव वृंद समस्त सज्जनों माताएं बहनों सभी को मेरा प्रणाम निवेदन है। दो दिन से श्री गिरिराज जी के महिमा के विषय पर समस्त वैष्णवों ने वर्णन किया है और इसके बीच में फिर से कुछ कहने का एक एक श्रेष्ठता मात्र है। वैकुंठ जनितो वरा मधुपुरे तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्य मुदार पाने रमणा तत्रापि गोवर्धन राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावना कुर्याद अस्त विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी नाप्तः। हम लोग मथुरापुर से चलते हुए ब्रज गोकुल में पहुंचे, वहां की कथाएं सुनी, जहां वत्सल रस की भूमि है, वत्सल प्रेम की, जहां पर बाल कृष्ण ने वत्सल रस का आस्वादन किया, उसके पश्चात वृंदावन को चलना होता है। इस वृंदावन में हम लोग आए, वहां पर कृष्ण ने सखाओं के साथ में गोगंड रस का आस्वादन किया, वहीं से ब्रजगोपियों का अनुराग प्रारंभ हुआ। बाल लीला के साथ साथ जब गोगंड में प्रवेश हुआ, गोगंड लीला में ही ब्रजगोपियों का अनुराग प्रारंभ हुआ। वह अनुराग प्रेम स्नेह मान प्रणय के साथ में बढ़ता हुआ भाव और महाभाव की स्थिति को प्राप्त हुआ। उससे कृष्ण के वृंदावन की लीलाएं हुई, वहां पर शादी या रास लीला चिरहरण लीला तक हुई, इसके पश्चात शादी या रास का वर्णन होता है। इसके पश्चात वर्णन होता है कि रमणा तत्रापि गोवर्धनम, जहां पर श्री कृष्ण ने ब्रजगोपियों के साथ में रमण किया है, ऐसे जो गिरिराज गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन के पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण आदि से अंत जाने सामने से पीछे तक पूरा ही पूरा देखा जाए, कृष्ण के जितने सारे लीलाएं हुई हैं, सभी ऐश्वर लीलाएं, कुछ पौगंड की लीलाएं हुई हैं, तो अधिकांश रूप में गोचारण के माध्यम से राधा कृष्ण की सर्वोत्तम मधुर लीलाएं हुई, जो कि श्री महाप्रभु जी ने जब श्री रायावंत से यह पूछा, चोरी करे राधा के नील गोपी गणे डरे, चोरी करके राधा को गोपियों के डर से राधा को छिपा करके ले गए, उसमें प्रेम की श्रेष्ठता कहां प्रकाशित होती,
राधा प्रेम की श्रेष्ठता,
राधा जी के राधा प्रेम की श्रेष्ठता कहां है, यदि सबके सामने आपने सामने सब को छोड़ करके राधा जी के साथ में जाए, तब तो साधना भर्तृका नहीं आएगी। यद्यपि श्री व्यास जी ने हमें आराधित होना श्लोक के द्वारा और श्रृंगार मठ की लीला के द्वारा राधा जी को समस्त गोपियों में सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रतिपादित करते दिए साधना भक्ति कर रहे हैं, पर तो उसमें कुछ कमियां रही जाती। तब श्री रामानंद जी ने महाप्रभु जी को सुनाया, जो कि गोवर्धन की बासंती रास, जहां कृष्ण ने पुत्री के कदम खंड में बासंती रास, जहां वासंती रास में कृष्ण ने देखते देखते आमने सामने समस्त प्रजोगियों को छोड़कर राधा जी के विरह में अधीर होकर जाए और उनके लिए विरह में अधीर होकर रोते और राधा जी को कुंजों में ढूंढते हुए भी उन्हें पता नहीं चलता, राधे राधे कहकर राधा कुंड में जहाँ राधा राधा नाम जप रहे हैं। मृदुवंत समीरण को धन्नाति धन्य कह करके जिनको समादर प्रदान कर रहे हैं राधा जी के वस्त्रांचल के सुगंध को लेकर के वो प्रवाहित हो रहा है, जिनके स्पर्श से अपने को धन्नाति धन्य मान रहे हैं हमारे आचार्य वालों ने उस दिशा को प्रणाम किया है। किसी समय श्रीमद विश्वभर मंदिर से राधा वृंदा को भेजा है कि वृंदे जाना तो श्याम सुंदर को ढूंढ के लाओ कहां पर है, जबकि श्याम सुंदर गौरी कुंड में है चंद्रावली के साथ। उस समय दूर से उन्होंने देख लिया वृंदा ने और उसी पोज में कुंज के अंदर में प्रवेश किया, मानो कहीं बड़ी भारी विपत्ति आ गई है और उसी बहाने में कहने लगी, हे श्याम सुंदर ब्रज में बड़ी भारी विपत्ति आ गई है, एक बड़ा असुर आ करके उपद्रव मचा रहा है, इस समय यदि ब्रजवासियों को नहीं बचाओ तो बड़ी दुर्घटना घट जाएगी। कृष्ण समझ गए कोई विपत्ति आई हो तो वृंदा क्यों आई, आते तो और लोग आते तो सब समझ में आता, ये तो कोई दुर्घटना नहीं और कोई विपत्ति भी नहीं, कोई असुर भी नहीं। जो बातें हैं कृष्ण के समझ में बैठ गया तो इसलिए कृष्ण चंद्रा से कहा, देखो चंद्रा अब मैं बाद में ही आऊंगा, अभी मुझे जाने दो। इतना कह करके कृष्ण अब निकल पड़े वृंदा के साथ। उस समय वृंदा कहने लगी, हे श्याम सुंदर आज तो तुम हाथे नाते पकड़ में आ गया ना, तुम चंद्रा के कुंज में, अब चलो आज तो राधे जी को कहते। इतना कह करके जैसे जाने लगी तो कृष्ण अब नाचने कूदने लग गए कि वृंदा तुम मत बोलना, वन मत बोलना, वृंदा आज परेशानी हो जाए। इस तरह से कृष्ण अब हाथ जोड़ते और पैर पड़ते मनाते हुए वृंदा को लेकर के चलने लगे राधा जी के पास। तो इस प्रकार समय लीलाओं के जो सभी स्थानों से परिपूर्ण जहां पर राधा जी के अनुराग का वर्णन होता है, इस प्रकार गिरिराज के जो है समस्त लीलाओं के आश्रय स्वरूप हमारे आचार्य पादों ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं अधिकांश लीलाएं गोवर्धन की राधा कुंड की लीलाओं का वर्णन किए हैं। यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी ने गिरिराज के राधा कुंड के माध्यमिक लीलाओं का वर्णन करते हुए और उनकी प्रधानता दे दी। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने इसलिए कहा, राधा कुंड यहाँ भी गोकुलपते प्रेमामृत प्लावना, जहाँ प्रेम की बार वही हो। इस प्रकार से गिरिराज महाराज जहाँ समस्त प्रकार से कृष्ण की राधा जी की सेवा करते, हमने सुना वैष्णवों के मुखारविंद से बताए जो कि गिरिराज और गिरधर दोनों ही स्वरूप में है, भले ही दोनों स्वरूप हो भक्त स्वरूप और भगवत स्वरूप, परंतु जितने भी साधक होंगे साधक के सामने बीच किस रूप में दर्शन दे और किस रूप में आप अनुभव करना चाहेंगे, आराध्य के रूप में ही भगवत स्वरूप में ही अनुभव करना होता है, और यदि वे गिरिराज किसी भक्त को दर्शन भी देते हैं किस रूप में देते हैं, ये हमारा एक प्रश्न, क्योंकि गिरिराज जब दर्शन देंगे तो भगवत स्वरूप में ही दर्शन, उनका भरोसा हो जाता है। जब कभी दर्शन देते हैं वो कृष्ण रूप में ही दर्शन देते हैं और भक्तों को उसी प्रकार से अनुभव दिलाते हैं। परंतु गिरिराजी जो है वे सब प्रकार से कृष्ण की सेवा करना है। तो गिरिराज जी सब प्रकार से कृष्ण की राधा जी की सेवा करते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने हंताय मत्री रवला हरिदास वर्जुन इस श्लोक की व्याख्या में भी वर्णन किया है कि गिरिराज जी सब प्रकार से कृष्ण की पूजा अर्चना करते किस रूप में, जैसे पूजा अर्चन में आसन देकर के आवाहन करके आसन दिया जाता है, आसन से फिर पुष्पांजलि पाद अर्घ आत्मनीय मधुपर्क आत्मनीय स्नानीय वस्त्र आभूषण यज्ञ सूत्र पुष्प गंध और नैवेद्य, ये सब से पूजा अर्चन होता है। इसी प्रकार गिरिराज जी क्या करते हैं, श्री कृष्ण के लिए राधा जी के लिए पात्र अर्घ आत्मनीय आसन जहाँ तहा रत्न वेदी बने। इस प्रकार रत्न वेदी में जहाँ पर श्याम सुंदर बैठा करते वृषभानंद जी के साथ और आसन पात्र अर्घ अनेक प्रकार के फूलों के द्वारा पुष्पांजलि समर्पण समर्पण करते, इसी तरह से चौड़ों में जल समर्पण करते हैं, जल तिल कुश दुर्वा धान ये सब के द्वारा अर्घ प्रदान करते हैं। इस प्रकार मधु है शहद घी है दूध दही ये सब के द्वारा मधु करके प्रदान करते हैं। इसी प्रकार जव से कंदर कंद मूल जिनकी कंदराओं में अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं, जैसे वृंदा देवी समस्त लीला के प्रसाधन सामग्रियां आवश्यक सामग्रियों को प्रस्तुत करती हैं, इसी प्रकार श्री गिरिराज जी राधा कृष्ण की लीलाओं के समस्त प्रकार के आवश्यक सामग्रियों को प्रस्तुत किया करते हैं और उनके लीला विनोद के लिए स्वयं गिरिराज स्वरूप में हमारे मध्य में विराजमान है। आज उस गिरिराज को हम नमन करते हैं, पुनः पुनः हम प्रणाम करते हैं। इतनी बात के साथ मैं अपना वक्तव्य यही रखता हूँ। वंशा सर्वदर्व से कृपा
बहुत सुंदर। तब मेरा एक निवेदन यह है, श्रृंगार को नंगा न किया जाए, जरा छिपा करके खूब सरल सहज से बोधगम्य भाषा में बोलनी चाहिए। इन्होंने जो कुछ कहा उसका सार तात्पर्य है दो शब्दों में, विश्व ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ है मथुरा, मथुरापुरी में भी श्रेष्ठ है गोकुल। गोकुल माने जहाँ पर गो का कुल, गोप गोपी गोप गोवत्सल इत्यादि रहते हैं, गो का समूह वो है गोकुल। गोकुल श्रेष्ठ है, उस गोकुल से रासस्थली किशोर लीला वाली वृंदावन भूमि श्रेष्ठ है और उस वृंदावन में जो रासलीला हुआ वो पंचायती रास, चंद्रावली प्रभृति भी सखी है, पक्ष विपक्ष तटस्थ सोहित प्रकार की गोपियां, इसके अतिरिक्त साधन सिद्धा भी जो पतियों के रुके जाने पर शरीर छोड़ दिया था, शरीर नहीं छोड़ा भाव छोड़ा, वो उसमें सम्मिलित थे, इसलिए राधिका जी को मान हो गया चली गई। किंतु वही हम देखते हैं गिरिराज गोवर्धन में चंद्र सरोवर की राधा जी को अकेले लेकर चले गए और वहां रासस्थली से अकेले लेकर के सबके सामने और राश सतकोटि गोपियों का राश भी समाप्त हो गया। और गोपियां कृष्ण को देख रही हैं चतुर्भुज के रूप में और सब प्रणाम करके जा रही हैं। और राधा जी आई दर्शन करने के लिए, खोजती हुई कृष्ण को अन्वेषण करती हुई तो देखा, तभी कृष्ण राधा जी को दूर से देखते ही पिघल गए, उनका भाव वो भूल गया, तन मन की शुद्धि भूल गए और अपना हाथ चार रखना भी भूल गए, दो भुज मूर्ख गिधर हो गए। ये राधा जी की श्रेष्ठता है, कहाँ पर, जिस गोवर्धन में ये सारी चीजें हैं, जहाँ पर राधा और कुंड श्याम कुंड जहाँ पर है, जहाँ पर मध्यान्हिक लीला का महत्व है, यह गिरिराज गोवर्धन जी उससे भी श्रेष्ठ है। प्रेमामृता प्लावन, प्रेम का अमृत, प्रेमामृत का यहाँ पर प्लावन होता है, बाढ़ विचित्र यहाँ पर आ गया, ऐसे गिरिराज जी का महत्व है, संक्षेप में इन्होंने ये कहा। तो इस तरह से हम लोगों ने बताया, कल हम लोग
दर्शन देंगे तो भगवान
को
भी दर्शन देंगे,
वो पीछे यहाँ कल हम लोग यहाँ से करीब 6:30-7 बजे जलपान यहाँ पर कर करके कुछ उदय कुंड तो यहाँ से हरि कथा समाप्त होते ही कीर्तन लेकर और यहाँ से इस गली से होते हुए निकलेंगे और उस बार में जा करके उसको पार करके मुखारविंद को पार करके और आगे वहाँ से राधा कुंड परिक्रमा का रास्ता जाता है, वहाँ तक हम लोगों ने कर लिए हैं और कल वहीं से आरंभ हमारी यात्रा होगी और वहाँ से राधा कुंड की तरफ में बहुत से ग्राम उद्धव कुंड इत्यादि होते हुए हम लोग राधा कुंड जाएंगे, वहाँ पर भी स्नान करेंगे, बीच में उद्धव कुंड पर जलपान कुछ करा जाएगा, बाल भोग दिया जाएगा और इसके बाद में हम लोग राधा कुंड श्याम कुंड की परिक्रमा करके उसमें जो स्नान करना चाहेंगे स्नान करें, खूब सावधानी के साथ, फिसल उसमें बहुत है, कहीं फिसलाहट में गिर न गए, इसलिए खूब सावधानी से। एक लड़का 2-4 वर्ष पहले समाप्त हो गया था, डूब गया था, वैसा ना हो, बच्चों को सावधानी से रखना अन्यथा दुर्घटना हो सकती है, कुंड लबालब पानी से भरा हुआ है, तो वहाँ स्नान करके या आचमन करके, और वहाँ प्रभुपाद उसमें स्नान ही नहीं करते थे, जे जड़ शरीर से क्या हम स्नान करें, आचमन ले ले, पुंडरिक विद्या निधि भी ऐसा ही करते थे। तो जैसा भी हो आप लोग जैसा उचित समझें करके, और फिर वहीं पर पहुंच जाना है राधा कुंड के पास में, वो जहाँ पर कि अन्नकूट हमारा होगा, और वहाँ पर अन्नकूट का दर्शन करके फिर शाम को 4 बजे तक यहाँ आ जाए, जब 5 बजे से फिर हमारी हरि कथा आरम्भ हो जाएगी। अभी तुरंत एक लीला हो रही है और ये शुड बी रेडी फॉर ड्रामा प्ले, तो ये शुड लीला देख करके जाएंगे।
Just very quickly.
No sound. Stop sound.
Just very quickly, Guru Maharaj giving the essence of Puttaparthi Maharaj's talk. Island of Chore is Goku. Island of Goku is Vrindavan, where Krishna did his Pancharati Ras. There are all types of gopis, seven sinners, Rishicharis, even Chandrabhavi went there. And Srimad Radhika performed Khan there. But in Govindan, we see the prominence of Kiriraj. There is Vasanti Ras at Chandrasarova. There Krishna directly in front of all gopis took Radharani alone.
There was showing
the evidence of Srimad Radhika. Then Krishna described his poem to the gopis.
राधा कुंड के पास में यहाँ कैनल है ना, इससे पहले ही हम लोग वहाँ पर गिरिराज जी का लगाएंगे और कल यात्री लोग वहीं पर प्रसाद करीब 11-12 बजे 12 बजे से
माखन निकाल के दिया, विक्रेतु कामा क्या भाव है।